व्यवस्था विवरण अध्याय 9। जैसा कि हम देख चुके हैं, व्यवस्था विवरण वास्तव में व्यवस्था का पुनरावलोकन है। ये एक प्रकार से मूसा द्वारा व्यवस्था का दोहराया जाना है, या यो कहें कि व्यवस्था का सारांश है। यद्यपि इस पुस्तक में मिस्र से निर्गमन से लेकर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने तक के 40 वर्षों का विवरण है, परंतु इसराइल के वंशजों को इसका विवरण सुनाने में मूसा को केवल 40 दिन का समय ही लगा था। यद्यपि मूसा वृद्ध हो चुका था, वो अब भी फुर्तीला था। उसकी दृष्टि और सुनने की क्षमता तीक्ष्ण थी। उसकी किसी भी इंद्री में कमी नहीं आई थी। मैं जब चश्मा पहनता हूं तो कई बार परमेश्वर से कहता हूं, हे प्रभु, तू मूसा को दृष्टिदान दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं। उसकी फुर्ती किसी से कम नहीं थी। वो चट्टानों पर उसी फुर्ती से चलता था, परंतु परमेश्वर ने उससे कह दिया था कि वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेगा। मूसा ये जानकर कि अब समय आ गया है, इसराइल को यर्दन पार करके यरीहो पर विजय पाना है, क्योंकि प्रतिज्ञा के देश में ये उनका पहला चरण होगा। उसे तो यर्दन पार करने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश था। वो समझ गया था कि अब उसका समय आ गया है कि वो इस संसार से कूच करे। अतः इन अंतिम 40 दिनों में वो उस वाचा को दोहराता है जो परमेश्वर ने उनके साथ बांधी थी। वाचा आधारित संबंध जो उन्हें परमेश्वर के साथ निभाना था, और उसी के अधीन उन्हें उस देश पर अधिकार करके वहां बसना था। अतः इस पुस्तक में मूसा के वचन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नियमों, आज्ञाओं को और विधियों की उन्हें याद दिलाता है, क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं होगा। अब वे इसके पास परामर्श एवं मार्गदर्शन हेतु नहीं आ पाएंगे। इस कारण वो उन्हें परमेश्वर के विषय एक एक बात फिर से अच्छी तरह समझाता है। अतः अध्याय 9 में वो कहता है, हे इसराइल, सुन, आज तू यर्दन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। व्यवस्था विवरण 9 का पहला पद। 40 वर्ष पहले भी वे उस देश में प्रवेश करने के लिए यहां आ चुके थे, परंतु उन गढ़ वाले नगरों की गगनचुंबी दीवारों को देखकर और भीमकाय पुरुषों को देखकर डर गए थे, और उन्होंने मिस्र लौट जाने के लिए अगुआ खोजना आरंभ किया था। इस पर परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया था। उन्होंने वहां गुप्तचर भेजे थे कि उस प्रदेश की जानकारी ले। वे वहां 40 दिन तक रहे थे। अतः जब उन्होंने डर के कारण परमेश्वर की अवज्ञा की, तो परमेश्वर ने कहा कि अब वे उन 40 दिनों के स्थान पर 40 वर्ष जंगल में भटकते रहेंगे, जिससे कि वो पीढ़ी समाप्त हो जाए, क्योंकि वे कहते थे, परमेश्वर हमें नाश करने के लिए यहां लाया है। हमारी पत्नियां और ये छोटे बच्चे सबकी कब्रें यहां बन जाएगी। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम अपनी संतानों की चिंता कर रहे हो तो ठीक है, वे ही इस देश में प्रवेश करेंगे, तुम नहीं। मूसा इसी भय को उनके दिलों से निकालने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यदि वे अब चूके तो उनका अंत विनाश होगा। अतः मूसा उन्हें प्रोत्साहित करता है, उनकी हिम्मत बांधता है और आने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराता है। वो उनके सामने आने वाली परिस्थितियों के बारे में उन्हें सच्चाई बताता तो है, परंतु उन्हें ये भी समझाता है कि जिस परमेश्वर की वे आराधना करते हैं, वो प्रत्येक बाधा से अधिक शक्तिशाली है। मेरे विचार में हमें भी मसीही विश्वास में होने के कारण जीवन की कठिनाइयों का सच्चा ज्ञान रखना है। जीवन के गंभीर विषयों को आसान समझना मूर्खता है। दूसरी ओर हमें ये भी विश्वास रखना है कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमारी किसी भी समस्या को सुलझाने में सामर्थी है। हमें अपनी समस्याओं से परे परमेश्वर के सामर्थ और रक्षा के हाथ को अपने जीवन में देखना है। यही मूसा कर रहा है। उसने कहा, हे इसराइल सुन, आज तू यर्दन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है और ऐसे नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग, व्यवस्था विवरण 9:2, तुम्हें दैत्यों का सामना करना होगा, अनाक वंशियों के सामने, व्यवस्था विवरण 9:2। ये अफ्रीका के हशबी के सदृश थे जो भीमकाय होते हैं, उनके सामने इसराइली बौने दिखाई देते थे। उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है, व्यवस्था विवरण 9:2। तुम ये सुनकर घबरा गए थे कि उन दैत्यों के सामने कौन ठहर सकता है, इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है वो तेरा परमेश्वर यहोवा है, व्यवस्था विवरण 9:3। ये सब तो सही है कि वे नगर गढ़ वाले हैं और वहां के लोग बहुत बड़े हैं, परंतु तुम्हारे आगे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चलेगा। कई बार हम लोग अपनी समस्याओं को देखकर भयतूर हो जाते हैं कि वो बहुत बड़ी है और हम परमेश्वर की महानता और उसके सामर्थ को भूल जाते हैं। जब हम अपनी समस्याओं के सामने होते हैं तब हम और कुछ नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति में परमेश्वर को भूल जाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक हो जाता है। परमेश्वर हमारी दृष्टि से अदृश्य कभी ना हो। सूरज का व्यास 865,000 मील है जो हमारी पृथ्वी से 2,00,000 गुना अधिक है, परंतु यदि आपके चश्मे का छोटा सा डब्बा आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आप सूरज देख नहीं पाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आपके सामने समस्या आती है तो वे अति महान परमेश्वर को जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है देखने में हमारी दृष्टि को अवरुद्ध कर देती है। मूसा भी यही सिखाना चाहता है कि उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी, परंतु वे ये कभी ना भूले कि परमेश्वर यहोवा उनके आगे आगे चल रहा है। हम शैतान के सामर्थ के सामने कुछ भी नहीं है और हम उसके असीम सामर्थ से ऐसे भयभीत हो जाते हैं कि हम परमेश्वर पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं, परंतु यूहन्ना अपनी पहली पत्री में लिखता है, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है, 1 यूहन्ना 4:4। आप शैतान की सामर्थ का जोड़ नहीं है और शैतान परमेश्वर की सामर्थ का जोड़ नहीं। ये प्रभु परमेश्वर ही है जो आगे आगे चलकर युद्ध करेगा और तुम्हारे बैरियों का देश तुम्हारे हाथों में देगा। हमें परमेश्वर और उसकी सामर्थ को याद रखना है और वो उनका सत्यानाश करेगा और वो उनको तेरे सामने दबा देगा और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा, व्यवस्था विवरण 9:3। मूसा ने उनसे कहा कि वे ध्यान रखें जब वे उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें जहां परमेश्वर ने उनके बैरियों का नाश कर दिया है, और जब वे वहां बस जाएं तब उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतानी है कि कहीं वे अपनी धार्मिकता के घमंड से चूर न हो जाएं और सोचे कि उनकी धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने उन्हें वो देश प्रदान किया है। ये धार्मिकता का गर्व कैसी भयानक चीज है। ये कितनी आसानी से हमसे जुड़ जाता है और हम जो है नहीं अपने आप को वो समझ बैठते हैं। ये हमारा भ्रष्ट स्वभाव है। हम हमेशा लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे धर्मी जन हैं, जो सदैव परमेश्वर की संगति में रहते हैं। ये वास्तव में हमारा अधर्मी स्वभाव है जो हमारे चारों ओर धार्मिकता का प्रपंच बनाए रखता है। हम अपने आप को बड़ा ही धर्मी, पवित्र और भक्त मनुष्य दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग सोचे कि हम बड़े पवित्र जन हैं। अतः परमेश्वर हमें काम में लेगा, परंतु मैं जानता हूं कि वो आपको क्यों काम में नहीं लेता है। आपके आडंबर के कारण। आपको ध्यान होगा, जब पत्रस और याकूब प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, तब एक व्यक्ति पैसों की मदद मांग रहा था। पत्रस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम में चल फिर। प्रेरितों के काम 3:6। पत्रस ने अपना सीधा हाथ बढ़ाकर उसे पकड़कर खड़ा किया और वो उछलने कूदने लगा तथा प्रभु का गुणगान करने लगा। उससे उछलते कूदते देख लोग कहने लगे, अरे ये तो वो पुरुष है जो वर्षों से द्वार पर पड़ा भीख मांगता था, चलो देखें ये हुआ कैसे। और 5,000 लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। जब लौटकर उस गलियारे में आया तो निश्चय ही वहां पत्रस को देख वो फिर उसके पास दौड़ा और लोग समझ गए कि ये चमत्कार पत्रस ने किया था। तब पत्रस ने उन लोगों से कहा, तुम हमें क्यों निहारते हो? क्या ये हमारी धार्मिकता है कि वो लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ? ऐसे समय में कल्पना कीजिए कि पत्रस किस संकट में होगा। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे होंगे, उसे संत कह रहे होंगे, उसे परमेश्वर का अनुग्रहित दास कह रहे होंगे, परंतु ऐसे सामर्थ को संभालना बहुत बड़ा बलिदान है। उसने क्या किया? क्या उसने परमेश्वर की महिमावन का सहरा अपने सिर बांधा? बहुत से परमेश्वर के दास अपनी लालसा के कारण ऐसी ही करते हैं कि लोग सोचें कि वे अद्भुत व्यक्ति हैं, पवित्र जन हैं, और उनका समर्पण और अभिषेक विशेष है, और वे ऐसा रूप भी धारण करते हैं कि लोग डर के मारे कहें, ओह उसके पास तो आत्मा की शक्ति है। ये बहुत बड़ा आत्मिक संकट है। वे परमेश्वर के साधन नहीं, स्वयं परमेश्वर बन गए। महिमा परमेश्वर को नहीं दी जा रही है। यही तो धार्मिकता है कि महिमावन परमेश्वर का है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को अपने पहले पत्र में लिखा, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। 1 कुरिन्थियों 9:27। अतः ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, तब आप में आत्मिक घमंड न आ जाए कि आप सोचे मैं पवित्र हूं, धर्मी हूं, परमेश्वर को समर्पित हूं, इसलिए परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है। परमेश्वर कहता है, इस प्रकार की मानसिकता मत अपनाओ। अतः जब इसराइली उस देश में प्रवेश करके बस जाए तो यह न सोचे कि उनकी धार्मिकता और पवित्रता को देखकर परमेश्वर ने उन्हें वो देश दिया है, क्योंकि वे वहां के वासियों से अधिक धर्मी हैं। परमेश्वर ने कहा, ये ना तो तुम्हारी पवित्रता है और ना ही धार्मिकता की, मैंने तुम्हें ये देश दिया है। ये तो इसलिए कि यहां के निवासी ऐसे दुराचारी और अशुद्ध है कि मैं उन्हें यहां से बाहर निकाल रहा हूं। इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वो अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वो तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हटीली जाति है। व्यवस्था विवरण 9:6। मूसा उन्हें उनके हट का स्मरण दिलाता है कि उन्होंने अपनी ठिडाई के कारण कई बार परमेश्वर को क्रोधित किया था। अभी वे मिस्र से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले काम किए और पूरे मार्ग में वे परमेश्वर को क्रोध दिलाते रहे। अतः वो उन्हें स्मरण करता है कि उसने एक से अधिक बार उनके लिए परमेश्वर से दया की याचना की, नहीं तो परमेश्वर उन्हें नाश कर देता। वो उन्हें तबेरा, मसा, किब्रोत, हतावा का स्मरण करता है और कादेश बरने का भी। तब वो कहता है, जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं उस दिन से तुम यहोवा से बलवाही करते आए हैं। व्यवस्था विवरण 9:24। अतः ये तुम्हारी धार्मिकता का प्रतिफल नहीं है कि यहोवा तुम्हें ये देश दे रहा है, ये केवल इब्राहिम और याकूब को दी गई प्रतिज्ञाओं के कारण है कि तुम इस देश में प्रवेश कर रहे थे। वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, तुम तो एक बलवा करने वाले लोग हो।